अब अगली आयतों को पढ़ते हैं जो और भी इससे खूबसूरत तरीके से हमें दिखाएंगी। इसका खुलासा यह है कि आसानियों में जन्नत नहीं मिलती, इसके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें तो सहनी पड़ेंगी। हम सारे काम दुनिया के भाग भाग के कर लें, लेकिन जब दीन के मामले में पड़े तो हम कहें कि हमारे पास ना वक्त है, ना हिम्मत है, ना ताकत है। ये चीज़ कभी इस्लाम के पौधे पे बहार नहीं लाएगी। आज आप देखिए कि पूरा ग्लोब बोल बोल के बता रहा है कि ला तस्मउ लिहाज़ल कुरान की इस पुकार पे वो कामयाब है, हम नाकाम हो चुके हैं। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम दीन को आम करने के लिए जगह बनाएं, इदारे बनाएं, हम लोगों को इस किताब से जोड़ें। वो कहते हैं कुरान नहीं सुनना, आप कहते हैं सुनना। 1-2 बिलियन मुसलमान अगर इस कोशिश में लग गए, आप देखिएगा वो लोग जो आज बेचारे सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, जहालत की वजह से इनकार भी कर रहे हैं या वो उस पर शक भी पैदा कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह इस चीज़ से अलग होंगे। और अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसका जिक्र अब अगली आए तो मैं, ये है दाई इल्लल्लाह, और वो कौन, वमन अहसनु कौला मिम्मन दाआ इल्लल्लाह, और इस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सारी दावत तबलीग तालीम का एक हदफ हो, लोग अल्लाह से जुड़ जाओ। मस्जिद नहीं, जमात नहीं, ग्रो नहीं, इदारा नहीं, उस्ताद नहीं, ये है दाई इल्लल्लाह, उसका अकीदा ठीक हो। दूसरी शर्त, और नेक अमल किया। ये नहीं कि खुद दूसरों को कह दिया और खुद कहा नहीं मुझे तो अब जरूरत ही कोई नहीं, मेरे कहने पे इतने जो कर रहे हैं तो मेरे करने की क्या जरूरत है, नहीं, अपना अमल। और तीसरी चीज, वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और कहा कि मैं मुस्लिम में से हूँ, यानी खुद भी अपना नाम अल्लाह के इस नाम के साथ जोड़े, किसी दूसरे गिरोह की तरफ जोड़ने की बजाय खुद को मुसलमान कहे। और अगली शर्त, वला तस्तविल हसनत वला सईया, और ए नबी नेकी और बदी बराबर नहीं, तुम बदी को इस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखो कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया। ये सिफत नसीब नहीं होती मगर इन लोगों को जो सब्र करते हैं। ये कौन सा सब्र है? दीन का सबर, दीन सीखने का सबर, दीन सिखाने का सबर, दीन पे अमल का सबर, मुखालफतों में डटने का सबर। इस सबर के बाद देखो कि खैर कितनी मिलती है। और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर इन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। अल्लाह कह रहे हैं यू आर सो ब्लेस्ड। इंग्लिश में लोग एक जुमला बोलते हैं यू आर सो लकी। कब कहते हैं किसी को लकी? जब अच्छा रिश्ता हो जाए, घर बने हो, यू आर सो लकी। किसी को डायमंड पहना देखा, बड़ी गाड़ी में देखा, यू आर सो लकी। अल्लाह फरमाता है तुम अपनी तरजीहात को बदलो। तुम अल्लाह की तरफ बुलाती हो, जोहज़ नसीम। तुम दीन पर अमल करती हो, तुम हो नसीब वाली। तुम हिजाब करती हो, तुम दाढ़ी रखते हो, तुम हो नसीब वाले। तुमने अल्लाह की किताब सीखने के लिए थोड़ा सा वक्फा ले लिया, तुम हो नसीब वाले। तुमने जॉब छोड़कर अल्लाह की जॉब शुरू कर दी, तुम हो नसीब वाले। दुआ कीजिए ये तरजीहात बदल जाए। अपने बच्चों को दुआ दिया करें कि अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब खोल दे, अल्लाह इनको जुहज़ नसीब कर दे। कैसे? हम क्या कहते हैं नसीब खोले? रिश्ता हो जाए, नहीं होते ना रिश्ते, उनको दीन में लगा दे। आप देखिए उससे खुशकिस्मत माएँ नहीं है। मैं उस माँ की बात जिसको अपने बच्चों की खुशी पे माना है अगर आपके सामने रखूं तो मैं इस बात का खुलासा यही निकालती हूं कि बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज्यादा जिस चीज से खुशी होती है ना, वो दुनिया में औलाद को फरमा बरदार देखकर और आखिरत की तरफ भागता देखकर। ये बुढ़ापे की माँ बाप की बात है। हाँ, जब न्यूली मैरिड पेरेंट्स होते हैं और बच्चे छोटे और माँ बाप बड़े, तब बड़े ड्रीम्स होते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। लेकिन बुढ़ापे में हर एक का यही दिल करता है कि अपने पीछे वो औलाद छोड़ दें जो हमारे लिए खुशखबरियां हो। और कभी सोचिए उस शख्स की खुशकिस्मती कि जिसकी कब्र में हर बेटे, हर पोते और नवासे का कुरान पहुंच रहा है। हाफिज़े कुरान बच्चे, हाफिज़े कुरान पोते, हाफिज़े कुरान नवासे नवासियाँ, ये है नसीब। इसकी दुआएं करें, यहाँ बैठकर दुआएं करें कि अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे। और जब भी नियत करेंगे ना अच्छी, तो फौरन शैतान कुछ तो ख्याल डालेगा। फरमाया फौरन उस पे क्या कर दो, वाइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानी नज़्ग़ुन फ़स्तईज़ बिल्लाह। ये हर जगह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फरमाया और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर इन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। क्या शैतान की उकसाहट है? नहीं, अभी नहीं, अगले साल, अभी नहीं, जरा थोड़ा, अभी नहीं, जरा बुढ़ापा आ ले, अभी शादी हो ले, अभी वो हो जाए। इस दुनिया को पूछते पूछते इधर से जाने का वक्त आ जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने आप को अगर नेकी में लेके आना चाहते हो तो इसके लिए डिले ना करो, क्योंकि गाइडेंस को जब डिले करते हैं तो क्या होता है, वो डिनाई हो जाती है। एक वक्त होता है एक नेकी का, आज दिल की जो हालत है ये रमजान गुजरने के बाद नहीं होनी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस्तकामत दे दे। और इसमें दाई दीन का एक और बड़ा खूबसूरत अदब है, इत्फा बिल्ला दी यासन, बुराई का जवाब भलाई से दो। दीन फैलाना है, अगर मिशन नबियों का है तो अखलाक भी अच्छा हो, कभी ना फटे, कभी लोगों को बुराई का ताना ना दें, कभी उनके ऊपर गलत ना करें, कभी इंतकाम लेने के लिए तबलीग ना करें, बस दर्द मंदी के साथ लोगों को बुराइयों का ख्याल दिलाते जाएं, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह आसानी करेगा। और क्यों ना करें उस रब का रास्ता इख्तियार, क्योंकि अल्लाह की निशानियों में से है ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि उस जात को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है। ये हकीकत किस पे खुली थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, कि मैं इन सब के रब को मानता हूँ। अगर फिल वाके तुम इसी की इबादत करने वाले हो, लेकिन अगर ये लोग गरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं, जो फरिश्ते तेरे रब के मुकर्रब हैं वो शब और रोज इसकी तस्बीह कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। जब फरिश्ते नहीं थकते तो हम क्यों थकें, कहिए सुबहान अल्लाह ही वबी हमदी सुबहान अल्लाह अलअज़ीम। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर जूं ही के हमने इस पर पानी बरसाया यकयक वो फबक उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो अल्लाह इस मरी हुई जमीन को जिंदा उठाता है वो मुर्दों को भी जिंदगी बख्शने वाला है, यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हमारे दिलों की जमीन भी सूखी थी, कुरान की बारिश हुई, दिल फबक रहे, दिल में अरमान जाग रहे, उमंगे आ रही हैं, ख्वाब आ रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह ये एक रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। देखिए भूख भी ना जाग लगे तो खाया भी नहीं जाता, ये तलब का जाग जाना भी बड़ी बात है कि अब हमने अपने दिलों को जिंदा करना है। जो लोग हमारी आयात को उल्टे मानी पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं, खुद ही सोच लो क्या वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो कयामत के रोज अमन की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कला में नसीहत आया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना। मगर हकीकत ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है, मानते सब कहें अल्लाह ये जबरदस्त किताब है। बातिल न इस सामने से इस पर आ सकता है ना पीछे से, ये एक हकीम और हमीद की नाजिल करता चीज है। ए नबी तुमको जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला है। अल्लाह हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा और हमें सजा ना दे। फिर कुरान का जिक्र, अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयात खोल कर बयान की गई। क्या ही अजीब बात है कि कलाम अजमी और मुखातिब अरबी। फरिश्ते भी हैरान होते होंगे कि आज हम अजमी लोग जब कुरान समझते नहीं है सिर्फ उसको पढ़ पढ़ के खुश होते हैं। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है। अल्लाह हमारे लिए इसको हिदायत का जरिया बना। अल्लाह हमारी जाहरी बातनी कल्बी रूहानी सारी बीमारियों से शिफा का जरिया बना दे। मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डाट, डाट किसको कहते हैं, ढक्कन। जब ड्रिंक बंद करके ऊपर से सील पैक कर दिया जाता है तो कुछ नहीं आता जाता। कुछ लोगों ने कुरान के लिए कान ऐसे बंद किए हुए हैं, सील्ड है उनके कान, और आंखों की पट्टी है, आंखों पे पट्टी बांध दे कुछ नहीं नजर आएगा, यानी उनको इस किताब में से कुछ नजर नहीं आता। इनका हाल तो ऐसे है जैसे इनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी और उसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ था। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात तय न कर दी होती तो इन्हें इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत यह कि ये लोग इसकी तरफ से सख्त इस तरह बंगेज शक में पड़े हुए हैं, और शक अमल का दुश्मन। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, आखिरी पैगाम है पारे का, किसी पे एहसान नहीं है मेरा, किसी पे कोई रोक नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है मुझ पे और आप पे अगर हमसे कोई नेकी वो ले ले। और जो बदी करेगा इसका बवाल इसी पर होगा, तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। तो क्या पता चला, आपको लग रहा है ना खजानों से भरा हुआ पारा पड़ा है। अच्छा हमने कितनी खूबसूरत आयतें, जब मैंने सुबह इसको खोल के देखा कितनी देर तो मुझे सिर्फ इसमें से आयते तदब्बुर ढूंढने में लगी, क्या करूं, ये रखूं कि वो करूं कि ये इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह पिछले साल की थी, इसलिए आज इसको छोड़कर आपके साथ सूरह ज़ुमर की आखिरी आयतें की। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह इस किताब को हमारे दिल की बहार बना दे। हल्का सा शीट को गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हो गई हैं, एक आधी जो रह गई है उसको इसी में से देख लेते हैं। हदफ लेकर जाएं घर तो फ़ायदा होता है, इंसान को उसमें गौर व फिक्र का मौका मिलता है। आयत तदब्बुर सूरह ज़ुमर की आखिरी आयतें थी, जिसके ऊपर अमल करते हुए हमने आज से ही कोशिश क्या करनी है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना और हसरतों से बच जाना है। आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है, आयत नंबर 53 से 58, इसमें जितनी भी हसरतें हैं उसको जमा करना है, 1 2 3 करके लिखना है और दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे इन हसरतों से बचा ले। आज की हदीस सही बुखारी की रिवायत है 1178, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, फरमाया मुझे मेरे जानी दोस्त, ये जानी दोस्त क्या है, प्यार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों की वसीयत की है कि मौत से पहले इनको ना छोड़ूं। नंबर एक, हर महीने में 3 दिन रोजे रखना। कौन से रोजे? 13 14 15 नियत करते हैं, अब तो रख ही रहे हैं, तो क्या 11 महीने में 3 रोजे रखने हर महीने में मुश्किल है? दूसरी बात, चाश्त की नमाज, जब सूरज खुल जाता है दो दो करके 4 नफिल पढ़ते हैं, ये जिस्म के जोड़ों का सदका है और अल्लाह ताला की तरफ से जिस्म में कुव्वत भर जाती है। और तीसरी चीज, वितर पढ़कर सोना। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। आज की दुआ हम कर चुके पीछे, इसको समझते हुए हर उस खता पे शर्मसार होना है जो जानते बूझते की अनजाने में की, और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है एहतसाब, एहतसाब करें क्या खोया क्या पाया, ताकि क़यामत के दिन की हसरतों से बचें। देखिए हजरत उमर फरमाया करते थे, हासिबू कबलान तो हासबू, अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तो अभी भी वक्त है, अभी खोए हुए को वापस बुला सकते हैं, इधर सांस की डोरी टूटी फिर खत्म हो जाएगा। टाइम वेस्टर, वक्त जाया करने वाला काम, जरा सा पढ़े देखें क्या लिखा है स्क्रीन पे। मेरे तो कान पक गए हैं लोगों से ये जुमला सुन सुन के, मुझे तो शर्म आती है पढ़ते हुए। आप पढ़ दे, मेरी मदद करें, जरा सा पढ़े। ये नहीं कहना कि वक्त नहीं मिलता, यकीन करें आज से कल तक आप नोट करें 10 दफा आपको टोकना पड़ेगा खुद को कि ये नहीं बोलना। और मैंने आपके बच्चों से और आपके घर वालों से पूछवा लेना है कि आपने कितनी दफा बोला है। जो वक्त ये जुमला बोलने में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करें, अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और आज की काबिल तकलीद मिसाल मर्द मोमिन, आपके साथ जिक्र हुआ इस पारे के शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत साथ शेयर की थी, तो एक छोटी सी पोइम के अंदर इसको शेयर किया हुआ है, 2-3 मिनट की है, देख लेते हैं।
العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله لها شروط، كما أن للمفتاح أسنان كذلك لا إله إلا الله لها شروط.
نبي نعرف الشروط.
قال العلماء: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب.
مرة ثانية لازم عشان نحفظها.
العلم واليقين والقبول،
يعني العلم واليقين والقبول،
والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب.
يعني نبي الشرح الحين.
العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وكذلك ختم العلماء بشرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت. من أجل ذلك يجب علينا أن نحقق الشروط من أجل أن ندخل الجنة، لأنه
كيف يحقق الواحد كل شرط من هذه الشروط؟
أن يعلم معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أن لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وما خلقت الجن والإنس
سبحان الله. وهذا يحقق معنى الإخلاص اللي احنا ننشدها. نعم. وهو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات.
نعم، يخلص الإنسان مع الله عز وجل في هذه الكلمة حتى يدخل جنة عرضها الأرض والسماء. نعم. لأن حق على الله عز وجل أن يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله قالها خالصا بها من قلبه.
شلون خالصا؟ شنو معنى خالصا؟
يعني ما عنده شك ولا ريب في هذه الكلمة، وأن الله عز وجل هو المتفرد، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأن يتعلم هذه الكلمة شروطها وأركانها ويبدأ في التطبيق وفي الحمام.
توحيد الربوبية.
توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله. أن يعلم من الذي خلق السماء إلا الله، ومن الذي بسط الأرض، ومن الذي نصب الجبال، من الذي ينزل الأمطار، من الذي خلقنا وشق أسماعنا وأبصارنا، من الذي يحرق قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى.
والتوحيد الثاني توحيد الربوبية،
هو وأيضا التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أن نصلي لله وأن نزكي لله
وأن نصوم لله
وأن نصوم لله وأن نخشى الله وأن لا نخاف إلا الله وأن نذبح
لله
لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
توحيد الأسماء والصفات،
أن يتعلمها وأن يدعو الله عز وجل بها، هذا هو التوحيد، أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها. هذه الكلمة لها قيمة ولها معنى، من تمسك بها رفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة.
الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
الله أكبر.
آپ دیکھیے کہ کم از کم کلمہ تو پکا کر جائیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، یقین کریں کہ میں کب سے منتظر تھی کہ ہم اس کو پڑھیں. آپ نے کل یہ پوئم ان کو یاد کرا دی ہے. آٹھ شرطیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بس ہمیں کلمے کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دیں. آج آپ نے جا کر جس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن نہ سنانے میں کامیاب ہوئے یا ہم سنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.